श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 13। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम लोक में, आविश्य प्रवेश करके च भी भूतानि जीवों को धारयामि धारण करता हूँ। अहम मैं ओजसा अपनी शक्ति से पुष्णामि पोषण करता हूँ च तथा औषधि वनस्पतियों का सर्वाः समस्त सोमः चंद्रमा भूत्वा बनकर रसात्मकः रस प्रदान करने वाला। हमने कल चर्चा किया था कि जब कोई व्यक्ति समझता है कि जितनी भी सुविधाएं प्रकृति की हैं वह भगवान के द्वारा आ रही हैं तो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और उसे कोई खाना दे तो उसके प्रति वो धन्यवाद अर्पित करता है, और अगर ऐसे ही मान लीजिए रास्ता पर चलते हुए खाना मिल जाए तो व्यक्ति किसी को धन्यवाद नहीं करता है। तो रास्ते पर चल रहा है अगर सामान मिल गया कुछ खाने का तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो वस्तु किसी ने रखी है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई वस्तु खाने को दे रहा है जब मैं बहुत भूखा हूं तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। ये बात आप समझ रहे हो, बहुत ही गुह्य बात है, क्योंकि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ प्रकृति कर रही है, और प्रकृति में क्या है, केवल केमिकल है। तो जब कोई इसके पीछे व्यक्ति नहीं है तो हम कृतज्ञता कभी अनुज्ञापित नहीं करेंगे, हम थैंक यू कभी नहीं बोलने वाले, और प्रकृति का हम संदोहन कर सकते हैं। संदोहन का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन। आप देख रहे हो ना कितना प्रकृति को संग गलत काम किया जा रहा है, पृथ्वी माता को भी खराब कर रहे हैं। तो मुख्य बात है कि वो लोग कहते हैं इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, और वो अपने भोग के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर कोई अपने भोग के लिए भी इस्तेमाल करे लेकिन कम से कम ये स्वीकार करे ये भगवान से आ रहा है तो भी उसकी कृष्ण भावना बढ़ जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी एक व्यक्ति था, वो शराब पीता था। ये उदाहरण उन लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे भक्तों के लिए नहीं कि अब हम भी इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होंगे, लेकिन एकदम निम्न कोटि के व्यक्ति था, शराब पीता था। तो प्रभुपाद बोल रहे थे इसको, तुम ये सोचो कि ये जो वाइन है ये भी कृष्ण से आ रही है, क्योंकि अंगूर नहीं होते और तो अंगूर की बेटी भी नहीं होती, समझ देना। तो अंगूर है, अंगूर की बेटी यानी शराब है, उसे सड़ाया गया है, उसमें पानी है, वो सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो वहां से तुम अपना कृष्ण स्मरण शुरू करो तो धीरे धीरे से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। लेकिन भक्तों को तो बहुत याद रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, जो भी अवस्था हमको मिली है भगवान से आ रही है। इसीलिए भगवान से भगवद्गीता में हमें सुनना चाहिए। देखिए इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है एक ट्रायंगल समझते हैं, त्रिकोण, त्रिकोण ऐसे त्रिकोण को आप कल्पना कीजिए, सबसे ऊपर है भगवान, इस कोने में है जीव और इस कोने में है माया। कौन कौन लोग हैं? भगवान सबसे ऊपर, जीव और माया, और इनका आपस में संबंध समझना चाहिए। भगवान का अंश है जीव, सनातन अंश है, शाश्वत दास है। जीवात्मा प्रकृति का भोग कर रहा है लेकिन वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, समझ में आ रहा है। और प्रकृति कृष्ण की दासी है, वो उनके मार्गदर्शन में चल रही है। ये तीनों संबंध समझ में आ रहे हैं। भगवान का अंश कौन है?
जीव।
और भगवान की शक्ति कौन है? प्रकृति, माया शक्ति। और माया किसके अधीन चल रही है? भगवान के। और प्रकृति का भोग करने का कौन प्रयास कर रहा है? जीवात्मा। समझ में आ रहा है। तो अब हम ये समझ में आ जाएगा कि हम प्रकृति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने शब्द यूज किया क्या? प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भोग भी नहीं कर सकते, इसकी सुविधा भी भगवान ने दी है। हम लोग इस प्रकृति से बिल्कुल अलग हैं। हम लोग सद हैं यानी शाश्वत है, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंदमय, जबकि प्रकृति असत है, अचिद है, निरानंद है। तो इस प्रकार प्रकृति की अभिव्यक्ति कहना चाहिए, प्रकृति वैसे शाश्वत है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति समझता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं तो इस जगत के भोगों में नहीं लगता है। ये बात समझ में आ रही है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति यही सोचता रहेगा जितनी भी वस्तुएं हैं ये मेरे भोग के लिए है। लेकिन अगर ये व्यक्ति सोच रहा है तब भगवान यहां बता रहे हैं, देखो अब यहां श्लोक में बता रहे हैं, तुम जो इस प्रकृति को देख रहे हो ये मेरी वजह से चल रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे सूर्य, हमने कल चर्चा किया था, सूर्य और चंद्रमा और अग्नि, उनका तेज भगवान से आ रहा है। आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। दो चीज देखिए इसमें, बहुत सुंदर बात है। मैं क्लास में समझा रहा था वृंदावन में कि मान लीजिए ये पुस्तक है, अब उस पुस्तक को मैंने उठा रखा है तो आप देख रहे हो कि मेरे हाथ के कारण ये पुस्तक हवा में टंगी है। अगर आपको मेरा हाथ नहीं दिखता तो आश्चर्य नहीं चकित होते आप, अरे ये हवा में कैसे उड़ा रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि एक पुस्तक हवा में उड़ रही है, ये आप विश्वास नहीं करोगे अपने आप। और हमारी पृथ्वी कैसे उड़ रही है, सोचा है ना? हवा भी नहीं है, बिल्कुल खाली स्थान है, उसमें वो उड़ रही है, तो क्या किसी का हाथ नहीं है इसके पीछे? आप उदाहरण समझ गए ना भाई, मैं आप मेरे हाथ देख पा रहे हो, लेकिन भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है कि भगवान केवल इच्छा मात्र से उनको तरा देते हैं। अब आप ये भी देखिए, मान लीजिए ये एक ईयरफोन है और ये मेरी किताब है, उन दोनों को मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और मैं इनको घुमा रहा हूं, लेकिन ये देखिए आपस में लड़ नहीं रहे, नहीं लड़ रहे ना? तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि भले ही ऐसा लग रहा है कि घूम रहे हैं, लेकिन ये मेरे हाथों के द्वारा नियंत्रित हैं। ये बात समझ में आ गई? आप देख रहे हो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, कितने समय से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? और साइंटिस्ट बोलेगा वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि नियम बनाए किसने, है कि नहीं? अगर आप यहां पे अंबाला में हमने देखा स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट वो कुछ जलती बुझती रहती टाइम लगा करके, तो भले ही आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, आप जानते हो उसके पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर या किसी डिजाइनर है जिसने की इसको डिजाइन किया है। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा सब गोल गोल घूम रहे हैं, बहुत स्पीड में घूम रहे, ध्यान देना चाहिए, आपस में कभी लड़ नहीं रहे। और अगर लड़ जाए तो क्या होगा आप जानते हैं, खत्म हो जाएंगे ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी ग्रह हैं इनको कौन अपनी शक्ति से पकड़ा हुआ है? भगवान ने पकड़ा हुआ। इसे कहते हैं भगवान संकर्षण की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। समझ में आ रहा है बात? और इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं कि एक ग्रह इधर रख दिया, ग्रह उधर रख दिया, अपनी कक्षा में घूमते रहेंगे। आप ये सोचिए कि इतनी सारी कारें हैं जिसपे आदमी बैठा रहता है फिर भी लड़ जाती है कि नहीं लड़ जाती? यमुना एक्सप्रेस वे में एक्सीडेंट हो जाता है, जहां खूब व्यवस्था है, खूब बड़ा रोड है, फिर भी कारें लड़ जाती हैं। लेकिन इतनी बड़ा अंतरिक्ष है, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो कहां से हो रहा है? भगवान से हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मट्टी हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बालू के कण है कि नहीं? वो आपस में चिपक कैसे रहेंगे, गोंद लगा है? सोचा कभी? जितने धूल के कण हैं वो आपस में चिपक करके एक पिंड के रूप में क्यों हैं? आपस में गोंद तो लगा नहीं है, बालू के कण आपस में चिपकते नहीं चिपकते? तो वो कौन है जो सारे इन कणों को साथ में जोड़ के रखा हुआ है? गामावश्य हर लोक में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार से इसको धारण किए हुए। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये भी व्यक्ति को देखना चाहिए, प्रकृति को देख करके भगवान के उपकार का क्या कह सकते हैं, धन्यवाद करना, कृतज्ञता अनुज्ञापित करना चाहिए। समझ में आ गया बात आपको? और उसके बाद जब आप लोग कभी भी सब्जी खाएं, कितने साल में खाते हैं सब्जी आप लोग? डेली खाते हैं, तो आप समझ सकते हैं, तीन बार खाते हैं तो आप समझ सकते हैं जो सब्जी का अलग अलग रस है वह भी चंद्रमा से आ रहा है। अच्छा, ये आश्चर्य नहीं लगता आपको कि पृथ्वी एक ही है लेकिन उसी स्थान से एक जगह गोभी निकल रही है, एक जगह पालक निकल रही है, एक जगह सब कुछ अलग अलग निकल रहा है, तो और उसमें सब में अलग अलग रस है, और वो रस कहां से आ रहा है? चंद्रमा से। तो भले हमको दिखाई नहीं पड़े लेकिन चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है इस प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएं हमें प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या सीख रहे हैं श्लोक से? जिस लोक में हम रह रहे हैं उसको भगवान धारण कर रहे हैं, और उसमें लोक में रहने वाले जो लोग हैं उनको शक्ति प्रदान करने के लिए सब्जी वगैरह जो खानी होती है उसको वो चंद्रमा से प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर वही बात, ये सारी चीजें हम अपने भोग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और योग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, भोग के लिए भी और योग के लिए भी। तो भोग की व्यवस्था कौन दे रहा है? कृष्ण। और योग के लिए कौन व्यवस्था दे रहा है? कृष्ण। दोनों ही लोग कृष्ण पे आश्रित। समझ में आ गया? तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति में से वायु में तैर रहे हैं। ये मैंने समझा दिया, इसको नहीं समझाऊंगा। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। श्लोक है, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं लेकिन यहां के हर एक अणु में भी भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में ब्रह्मांड में जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है, अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। ये तो समझ में आ रहा है, परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं और सारे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा समझिए, मेला आप लोग समझते हैं, कुंभ मेला समझते हैं, कुंभ मेला ओके। कुंभ मेला में कुंभ मेला का डीएम होता है, मेला डीएम कहा जाता है उसको, समझ में आ रहा है। डीएम जानते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो पूरे प्रयागराज को नहीं कंट्रोल कर रहा है, वो कुंभ मेला डीएम कहलाता है। तो वो मेला डीएम कब तक रहेगा? जब तक मेला है। समझ में आ गया। उसी तरह भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में, जो कि इस जगत को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। भगवान को इस जगत से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं, भगवान मतलब भगवान कृष्ण, वो गोलोक में अपनी लीला करते रहते हैं, लेकिन जीवों को यही सुविधा देने के लिए, भोग और योग की सुविधा देने के लिए अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में। ये समझ में आ रही बात। मेला डीएम याद रहेगा, मेला डीएम हमेशा मेला का मैनेजमेंट नहीं करता है, जब मेला होता है तब वो करता है। ये भी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मेले में बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। खैर कुंभ मेला में तो लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन और मेलों में लोग भोग करने के लिए जाते हैं। तो ये भी पूरा जगत है, ये केवल एक मेला है। मेला में अच्छा शब्द है, मेला मतलब हम मिलते हैं लोग, है ना, और मिल करके साइन अप करके लोग भोग कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन वस्तुतः जब कोई शादी करता है तो लड़के या लड़की, लड़का और लड़की साइन अप करते हैं। साइन अप का मतलब समझते हैं, मतलब एग्रीमेंट में रहते हैं कि हम दोनों मिलकर भोग करेंगे। वस्तुतः भोग की व्यवस्था मतलब बच्चे होंगे, परिवार होगा, बड़ा मकान बनाएंगे, और ये एक प्रकार का मेला है, छोटा मेला। और इस तरह के छोटे मेले जो है, एक मेले में बहुत सारी दुकानें होती ना, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, और बहुत बड़ा विशाल मेला इस जगत का बनाया गया। केवल पृथ्वी ही नहीं पूरे संपूर्ण जगत, मतलब स्वर्ग लोक, सुतल लोक, सब जगह मेला चल रहा है। और मेले के डीएम कौन है? भगवान कृष्ण, जो अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं। तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं, तो मेला डीएम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोक शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। समझ में आ रहा है भाई, जीवित आदमी तैर लेता है, जीवनी शक्ति होती तो तैरता है, और अन्यथा वो डूब जाता है। तो जितने भी ग्रह हैं वो तैर रहे हैं शून्य में, कारण क्या है? भगवान की शक्ति। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, आप लोगों को बहुत क्लियर है, लेकिन अद्भुत बात यह है जो साइंटिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं, उनको क्लियर नहीं। इसीलिए मैं कल भी एक भक्त को बता रहा था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको बोल रहा था कि अगर बुद्धि से ही भगवान की भक्ति हो जाती, बुद्धि से सब समझ लेते, तो आप तो ऑक्सफोर्ड में गए हो, ऑक्सफोर्ड में सारे लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे? पकड़ में आ रहा लॉजिक कि अगर केवल बुद्धि से ही भगवान समझ में आ जाते तो सारे लोग जितने साइंटिस्ट हैं भगवान की भजन करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये जो ग्रहों का जो मूवमेंट है, ये मैं वहां पे भी समझा रहा था, जितना आप समझ रहे हैं उससे कई गुना अधिक साइंटिस्ट समझता है कि कितनी सुंदरता से रखा हुआ है। आप लोगों को पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में, हमारी पृथ्वी जो है वो 66.5 डिग्री पे अपने कक्षा में घूम रही है, और जरा से ऐसे होती तो हम मर जाते। अब बताओ कौन उसको ऐसे रखा हुआ है? वो गर्दन टेढ़ी करके घूम रही है ऐसे, और बड़ी स्पीड से घूम रही है। सूर्य अगर कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा भी पास आ जाता है, हम लोग खत्म हो जाते। तो कौन रखा है सूर्य को अपने स्थान पे? भगवान ने रखा हुआ है। अब अद्भुत बात यह है कि साइंटिस्ट आप लोगों से, मुझसे अधिक जानते हैं ये बात, फिर भी बोल रहे हैं नहीं नहीं इसके पीछे कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। जैसे देखिए, हम लोगों ने कल कुछ प्रसाद बनाया, अब भक्तों को अच्छा लगा, तो कोई पूछे भाई किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आ गया। तो मतलब क्या है, उस व्यक्ति से द्वेष है, जिसने बनाया है उसे द्वेष है। तो ये लोग द्वेषी हैं भगवान के, इस कारण से देखने के बावजूद भी नहीं देखना चाहते कि इसके पीछे एक व्यक्ति। तो खैर ओके। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक में को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं, ये अच्छा उदाहरण है, ये उदाहरण आप समझ रहे हैं। मुट्ठी में आप बालू भर लेंगे तो बालू के कण जो अन्यथा गिर जाते वो इकट्ठे रहेंगे। अब दिक्कत ये कि मेरी मुट्ठी दिख रही है और भगवान की मुट्ठी दिखाई नहीं पड़ती। परस शक्ति विविधै विश्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियां ऐसी हैं कि वो अपने आप ही कार्य कर रहे हैं। जैसे सोचिए, मान लीजिए जिनके घर में, आपके घर में प्रसादम है ना, तो आपकी माता जी कुकिंग कर रही हैं। अब मान लीजिए माता जी भी यहाँ क्लास में बैठी रहती और आप खाली सोचते रहते अच्छा सैंडविच बन जाए, ये हो जाए, तो हम लोग चक्कर करते हैं प्रतुल प्रभु आप भी यहाँ हैं, माता जी भी यहाँ हैं, कैसे प्रसादम टाइम से बन गया। अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं देख सकते हैं ना। भगवान योग निद्रा में है, करुणा दक्षाय विष्णु, और खाली इच्छा करते हैं तो वैसे बस खाली देखते हैं और प्रकृति पे दृष्टिपात करते, सारे जीव उसमें गर्भ में प्रकृति के स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद वो गर्भ दक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं, वो भी लेटे रहते हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी सारा कार्य करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। जैसे आप बहुत इसको समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से रोड नहीं बनवाते, लेकिन उनकी आज्ञा से पूरे भारतवर्ष में रोड बन रही कि नहीं बन रही, ये बात समझ में आ रही ना। व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा के द्वारा वो कर सकते हैं। इस प्रकार से एक धारण मोटा मोटा दे रहा हूं, उसी प्रकार से भगवान की शक्तियों से अपने आप कार्य होता रहता है और वो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती रहती है। ठीक है, उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। चर का मतलब होता है चलने वाली और अचर मतलब है न चलने वाली। जैसे कभी आपने सोचा है या देखा है, आपने समुद्र देखा है कभी? आप सोचिए इतनी विशाल जल राशि है और वो तट पे ही टिका रहता है। अगर समुद्र अपने पे आ जाए तो पूरा लील सकता है, लेकिन वही टिका हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, जो चलने वाली नदियां हैं या जो समुद्र है वो अपने ही स्थान पर टिकी हैं, तो किसके कारण? भगवान के कारण। और मान लीजिए हिमालय चलने लगता तो नहीं, हिमालय जहां पे रख दिया भगवान ने वहीं पे है, वो हिला नहीं सकते उसको। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं चर अचर जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की कृपा से अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोक लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इस चीज को भगवान कपिल देव बोलते हैं, मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। मेरे ही भय से वायु बहती है और मेरे ही भय से सूर्य उगता है। भय का अर्थ है आज्ञा, मतलब ऐसा नहीं भगवान भी भगवान के सेवक हैं, लेकिन सोचिए अभी हवा टाइट हो जाए हमारी, तो हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? अब देखा जाए तो हर क्षण हम लोग अपने हर मतलब एक एक सांस के लिए भगवान पे आश्रित थे। और हुआ भी था, आप लोगों को पता होगा, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो अपने को भगवान में से एक करके उन्होंने सांस रोक दी और पूरे जगत में सांस रुक गई लोगों की, तो बड़ी परेशानी हो गई। एक बार हनुमान जी को इंद्र ने वज्रपात कर दिया था, तो हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, तो वायु जी ने भी हवा टाइट कर दी, रोक दी हवा, सबकी हालत खराब हो गई। तो आप देख सकते हैं कि देवता लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको कृष्ण की आज्ञा से चलना होता है। और आप लोग भागवत भी पढ़ सकते हैं, यमदूत बोलते हैं हम तो सोचते थे आप ही सबसे बड़े जज हो, तो आपसे भी ऊपर कोई व्यक्ति है? तो कहते हाँ, मुझसे ऊपर मतलब सबके ऊपर भगवान कृष्ण है, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले, उनके तुच्छ सेवक की तरह कार्य करते हैं। तो सोचिए इतने बड़े बड़े लोग जब कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हैं और कोई व्यक्ति कहे मैं कृष्ण को नहीं मानता, तो ये मूर्खता की बात है। तो कृष्ण को नहीं मानते हो तो जेलर को मानना पड़ेगा, दुर्गा जी को मानना पड़ेगा, और वो अपना जो त्रिशूल है वो भोगती रहेंगे। आपको पता है ना त्रिशूल मतलब आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। चल भाई, ऐसे होता है ना, यहाँ पे गैया को ठेरने के लिए क्या डंडी मारते रहते, तो जब कोई नहीं भगवान की बात सुनेगा तो सोटी पड़ेगी उसके, दुर्गा जी की, क्या कर सकते। ये एक चीज महत्वपूर्ण है कि कभी कभी माता पिता बहुत स्नेही होते हैं, तो अपने चाहते हैं कि लड़का ठीक हो जाए, लेकिन खुद भी नहीं लड़के को पिटाई करना चाहते या शिक्षा देना चाहते हैं। तो प्राय कहते हैं ना कि भाई हमसे तो नहीं पढ़ता है, जब ट्यूशन वाला मास्टर आता है दो चाटे मारता है तब बैठ करके व्यक्ति पढ़ता है। तो किसकी आज्ञा से आया है? माता पिता की। देखिए माता पिता मारपीट वाला काम नहीं करना चाहते, तो दुर्गा जी मारपीट कर रही है क्योंकि हम लोग ऐसे ही बच्चे हैं जो कृष्ण के शरणागत नहीं होना चाहते। तो ये मारपीट करके भाई है ना, देखो आप प्रचार हम लोग जब करते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कृष्ण से प्रेम करो, सीधे बोलते हैं भाई जगत में कष्ट है
तब लोगों को समझ में आता है हाँ कष्ट तो है भाई, कुछ तो भजन करना चाहिए। देखिए हम लोगों को प्राय जगत में कोई भयानक बीमारी होती नहीं, इसलिए हम समझते नहीं है। नहीं तो कभी आप अस्पताल चले जाइए, लोगों को गैंग्रीन और पता नहीं क्या क्या होता है, इतना कष्ट है कि घबरा जाता है व्यक्ति कि क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, बहुत खतरनाक है। ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान बहुत सारे कष्ट से बचा देते हैं, नहीं तो सोचिए थोड़ा सा भी अगर उंगली का ये नखून कट जाए हट जाए तो कितना दर्द होता है, तो विचार करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों को पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो अगर कोई व्यक्ति खूब खाने का शौकीन भी है तो उसे खाते समय याद रखना चाहिए, कोई बात नहीं, खाना खाते समय याद रखना चाहिए कि ये जो स्वाद है ये भी भगवान की कृपा से ही आ रहा है। अन्यथा सब्जियों में ना लौकी भी वैसी ही लगती है जैसे शिमला मिर्च, तो कैसा लगता बताइए। कभी सोचिए लौकी शिमला मिर्च पालक गोभी और भिंडी सबका एक ही स्वाद होता तो बोर हो जाते हैं ना। इसका डिजाइन अलग अलग है लेकिन सबका एक ही स्वाद है। तो भगवान कृपा करके हमें इस प्रकार से दे रहे हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शक्ति से इंडिपेंडेंटली खाने का स्वाद भी नहीं ले सकते। इन इंद्रियों में भी शक्ति भगवान ही दे रहे हैं जिसके द्वारा हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, सूंघ दे पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे भोग के लिए, हमारे योग के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए हम लोग पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। अब जिस पे इतना निर्भर है तो क्या उनके लिए 2 घंटे भी भजन नहीं करना चाहिए? सोचिए हम लोग ने कितने आश्रय लिया हुआ है अपने परिवार का, ना पत्नी का, बच्चों का, घर परिवार का। माता पिता बोलते हैं, माँ बोलती बेटा तेरे को मैंने जन्म दिया है, और जन्म देने के बाद और बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोग अपना उपकार दिखाते, तुम भजन मत करो, तुम्हारा ये उपकार है वो उपकार है। कृष्ण यहां बता रहे हैं कि उपकार करने वाले तो हम हैं। अब सोचिए जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ को पता था कि आप उनके गर्भ में हैं, आप मतलब आपको जानती हैं, जानती थी। अच्छा ये पता था कि उनके शरीर से किस प्रकार से पोषण मेरे उनके बच्चे को हो रहा है, कौन व्यवस्था कर रहा है? तो बताओ जन्म किसने दिया? तो उपकार किसका अधिक है और पालन कौन कर रहा है अभी? और हम कहते हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए माता पिता की सम्मान करना चाहिए ना। कौन बोला ऐसा करने के लिए? भगवान बोल रहे हैं देव दुजा गुरु प्राज्ञा शूच पूजनम शौच मार्जवम। तो अगर अगर माता पिता कहें कि कृष्ण को ना मानो तो बोले फिर तो कृष्ण को नहीं माने। अरे तो कृष्ण तो बोल रहे हैं कि हम आपकी बात माने, आपको आदर दें, ये तो कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो आदर देने का मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण का भजन नहीं करें, ये तो हमारे खुद का आलस है जो हम बहाना मार देते हैं कि पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, नहीं वो हमारी खुद की अविद्या की वजह से हम लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो वस्तुतः बहुत अकृतज्ञ व्यक्ति है ना। आप मान लो अकृतज्ञ मतलब जो कभी थैंक यू नहीं बोलता, ना सॉरी बोलता है ना थैंक यू बोलता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इसलिए हर व्यक्ति को इस प्रकार से, स्पेशली आप लोग प्रकृति के साथ में रह रहे हैं तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग कृष्ण पे निर्भर। आप सोचिए आप यहाँ का पानी खारा हो जाता तो कितना मीठा पानी दे रहे हैं ना भगवान। आप वृंदावन आई वहां पे पानी खारा है तब समझ में आता कि नहाने के लिए पीने के लिए कितना मुश्किल है। आप लोग जिस पानी से नहाते हैं वो हम लोग जो है वहां पे आप लोग उसको बनाना पड़ता है और पानी, और वो भी टेस्ट नहीं आता। तो ये सब चीज के लिए भगवान पे हम यहाँ पे आकर महसूस करते हैं वहां कितने लकी हैं ये लोग, मीठा पानी मिल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा। तो ये जो भी जो हम लास्ट पॉइंट ही बोलेंगे, जो भगवान ने हमको समृद्धि दी है, आज हमको स्वस्थ शरीर दिया है, उससे भगवान का भजन करना चाहिए। उससे हम लोग खुद भी सुखी होंगे और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है जब भगवान कह रहे हैं, इनका प्रश्न समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हम तो ज्यादा निर्लिप्त नहीं होते, कोई अपना कर्म कर रहा है अपना भोगे, और दूसरी तरफ हमने बताया कि कर्म से भगवान नष्ट कर देते हैं। कर्म नष्ट करते हैं जब हम उनका भजन करते हैं, तब भगवान बोल रहे हैं 9वें अध्याय में यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुष्व दर्पणम्। तुम जो कुछ भी खाते हो वो मुझे समर्पित करो, कोई भी तपस्या करते हो मेरे लिए करो। आप लोग सुबह उठकर आज तपस्या किए ना भगवान के लिए, एकादशी करो, या जो भी तपस्या करते हो भगवान के लिए करो, और उसके बाद कोई दान करते हो, जैसे आप यहाँ पे सब लोग कुछ दान करते हैं कि भगवान का प्रसाद बने या कुछ हो, और जैसे आप लोग सुबह स्नान किए आज, तो स्नान करना भक्ति है मनु प्रभु, स्नान करना, दुनिया में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। जब आप मंगल आरती जाने के लिए, देखिए मंगल आरती जाने के लिए स्नान करते हैं तो वो भक्ति हो जाता है, समझ में आ गया। बस जैसे आपने एक ग्लास लिया पानी, इसमें गंगा जल ले लिया, जब इस पानी को गंगा जल में मिलाते तो ये भी गंगा जल हो जाता है। इसे कहते हैं संग सिद्धा, दो शब्द हैं, स्वरूप सिद्धा और संग सिद्धा, ये बहुत अच्छी बात है। यस, तो अब आप देखिए, आप यहां मंगल आरती किए, जबकि ये है स्वरूप सिद्ध भक्ति, डायरेक्ट भक्ति, और वो कार्य जो इस भक्ति के लिए भूमिका का कार्य करते हैं वो भी भक्ति बन जाते हैं इस भक्ति के संग से, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, इस प्लेट को साफ किया गया था आरती प्लेट को शाम को, तो सफाई का काम तो है, भक्ति नहीं है डायरेक्ट, वैसे तो वो भी भक्ति है, लेकिन ये भूमिका बना रहा है आरती करने के लिए, समझ में आया। तो अब आप बिना स्नान की तो भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो स्नान करना भी भक्ति हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यद करोषि अर्पणम, जो आप मान लीजिए गोभी काटने जा रहे हैं, परिवार की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो परिवार जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो परिवार का जो परिवार का कह सकते हैं जो पालन पोषण है वो भी भक्ति हो जाता है। इसे कहते हैं संग सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति कर रहे हैं उसको जो साथ में मदद करने वाले कार्य हैं वो कार्य भी भक्ति बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं क्यों बोल रहा था ये बात, लेकिन हाँ, तो अब जब कोई इस प्रकार से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करता है, तब भगवान कह रहे हैं शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपशस्ति। तुम इस प्रकार से अपने कर्म को समर्पित करोगे, जो कुछ खाओगे मुझे मुझे अर्पित करके खाओगे, जो तपस्या करोगे मेरे लिए करोगे, और दान करोगे तो मेरे लिए करोगे, तो क्या होगा, शुभ और अशुभ दोनों कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। जब हम बोलते हैं कर्म फल से मुक्त हो जाओगे, हम लोग सोचते हैं खाली पाप से मुक्त हो जाओगे, नहीं, पुण्य भी खतरनाक है भाई। अगर पुण्यात्मा रहे और दोबारा जन्म हुआ तो भी तो माँ के गर्भ से लेना पड़ेगा जन्म, ठंडी तो तब भी लगेगी, बीमारी तो तभी भी आएगी। तो इसलिए पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते, दोनों खत्म करके भगवान हमको अपने धाम पे लेके जाएंगे। तो बताइए कितना आसान काम है, काम हाँ आपने मांस खाया हुआ, ठीक है,
आगे मिलेगा मेरे को उसके?
नहीं, नहीं मिलेगा अगर आप आगे और ना खाएं। और यही भगवान बोल रहे हैं शुभ और अशुभ, ये अशुभ कर्म है, तो अशुभ और शुभ दोनों समाप्त हो जाते हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण को इच्छा चीजें करना है, जो खा रहे हैं भगवान को अर्पित की, जो खाने का मतलब जो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं प्याज लहसुन चाय पे भोग लगाती है, तो वो आप डिटेल मालूम कर लीजिए क्या भोग लगा सकते हैं। दूसरा, जो भी दान करें वो भगवान के लिए दान करें, और करें जरूर, ये नहीं कि जो जब मन में आ गया तब करें, वस्तुतः कम से कम 10% अपनी आय का तो देना ही चाहिए, इतना तो शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और अगर ये हो सके तो एक बैंक अकाउंट अलग खोल लेना चाहिए, हमारे गृहस्थ भक्त हैं जो अलग अकाउंट खोले उसमें डाल ही देते हैं पैसा, वो खर्च करना ही है उसको ऐसा करके। और कोई तपस्या करें तो भगवान के लिए करें, जैसे सुबह उठना, नाम जप करना, एकादशी का व्रत पालन करना, और चौथा चीज क्या है, जो भी कुछ करें वो कृष्ण के लिए करें, अर्थात जो और कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा में लग जाए। धीरे धीरे ट्रेनिंग के द्वारा मालूम चल जाता है, तो एक चार चीज अगर व्यक्ति करे तो मुक्त हो जाएगा। भगवान खुद स्वयं बोलने, आप 90 अध्याय को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये समझ लेना चाहिए कि भगवान का ही हम सबसे बड़ा उपकार है, उनको नहीं भूलना चाहिए, बाकी किसी को भूल जाए ना भूल जाओ, लेकिन और बाकी लोग तो भगवान को भुलाने का ही कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भूल सकते हैं लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ रुकेंगे,
कल प्रभु जी आपने बोला था अभी, कल याद करवाना
क्या
था थोड़ा, जैसे हम कृष्ण की भक्ति करते हैं
हाँ,
तो सद्बुद्धि ऐसा क्वेश्चन था
वो शाम की क्लास में बताएंगे, ठीक है। शील प्रभुपाद।